नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की। तनाव बढ़ने और नागरिकों के मारे जाने पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुस्तफा खामेनेई ने कहा, वे खाड़ी के अरब देशों पर हमले जारी रखेंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करके अमरीका और इसराइल पर दबाव बनाने का निश्चय किया। ऑपरेशन एपिक्यूरी के दौरान इराक में अमरीका का सैन्य ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त। और भारत ने FIH हॉकी महिला विश्व कप में अपनी जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तनाव बढ़ने और नागरिकों की मृत्यु होने तथा नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचने पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा वस्तु और ऊर्जा की निर्बाध परिवहन की जरूरत भारत की उच्च प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने शांति और स्थिरता के लिए ईरान की प्रतिबद्धता व्यक्त की और संवाद तथा राजनयिक माध्यमों से समाधान का आग्रह किया। पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में पिछले कुछ घंटों में ताजा हमलों और हवाई बाधा की घटनाएं तेज हुई हैं। इसराइल की सेना ने बताया है कि उनके विमानों ने बसीज अर्धसैनिक बल द्वारा संचालित जांच चौकियों को निशाना बनाकर तेहरान में हमले किए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेज के अनुसार इन हमलों में राजधानी में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सड़क बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। ईरान के अधिकारियों ने अभी तक इन हमलों में हुए नुकसान की व्यापक पुष्टि नहीं की है। एक रिपोर्ट।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों ने खाड़ी सहयोग परिषद में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। खाड़ी के सभी देशों में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया है और तेल डिपो जैसी जरूरी जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सऊदी अरब में एयर डिफेंस ने तेल ठिकानों की ओर बढ़ रहे ड्रोनों को मार गिराया है। वहीं बहरीन, जहां अमरीकी नौसेना का बेड़ा मौजूद है, वहां भी सेना पूरी तरह मुस्तैद है। यहां संयुक्त अरब अमीरात में भी सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक कल ईरान की 10 बैलिस्टिक मिसाइलों और 26 ड्रोनों को यूएई ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इस बीच यूएई सरकार ने विदेश में फंसे उन प्रवासियों को बड़ी राहत दी है जिनकी रेजिडेंसी वीजा की अवधि समाप्त हो गई है। ऐसे लोग अब बिना नए परमिट के यूएई लौट सकेंगे। यह सुविधा 28 फरवरी से 31 मार्च तक यानी एक महीने के लिए लागू रहेगी। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आगाह किया कि पश्चिम एशिया की स्थिति वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने कहा कि वहां जारी संघर्ष के कारण नागरिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी पक्षों से तनाव कम करने और संवाद की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने शत्रुता तत्काल समाप्त करने का भी आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि कूटनीति के माध्यम से समाधान एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुस्तफा खामेनेई ने कहा है कि वे खाड़ी के अरब देशों पर हमले जारी रखेंगे। उन्होंने रणनीतिक होर्मुज जल डमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद करके अमरीका और इसराइल पर दबाव बनाने का निश्चय किया है। देश के सर्वोच्च नेता चुने जाने के बाद उनका ये पहला बयान है। सरकारी टेलीविजन पर बयान में उन्होंने युद्ध में मारे गए लोगों का बदला लेने का वायदा किया। इस बयान से युद्ध जारी रखने की उनकी इच्छा का संकेत मिलता है। युद्ध से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और खाड़ी अरब देशों की सुरक्षा बाधित हो गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के हमलों में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। श्री नेतन्याहू ने संवाददाता सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से सामने न आने वाले ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुस्तफा खामेनेई को रिवॉल्यूशनरी गार्ड की एक कठपुतली बताकर निंदा की। उन्होंने ईरानी लोगों को भी संबोधित करते हुए कहा कि स्वाधीनता के एक नए मार्ग का समय आ रहा है। इसराइल उन लोगों के साथ खड़ा है। अमरीका के वित्त विभाग ने ईरान युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को ध्यान में रखते हुए रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की है। वित्त विभाग ने कहा कि वो अगले महीने के लिए प्रतिबंधित रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और बिक्री को अधिकृत करने से संबंधित लाइसेंस जारी कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सप्ताह की शुरुआत में संकेत दिया था कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के कारण बाजार में तेल की आपूर्ति में आई कमी की भरपाई के लिए वे तेल पर लगे प्रतिबंधों में और ढील देने के लिए कदम उठाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि इराक में अमरीका का KC-135 ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये विमान ईरान के खिलाफ अभियान का हिस्सा था। एक रिपोर्ट।
सेना ने कहा कि दुर्घटना गोलीबारी के कारण नहीं हुई। मध्य पूर्व की निगरानी करने वाली अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि अभियान में दो विमान शामिल थे, जिनमें से एक सुरक्षित उतर गया जबकि दूसरा पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमरीका ने स्वीकार किया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में अमरीका की ये चौथी विमान दुर्घटना है। सेना ने पुष्टि की है कि पिछले सप्ताह अमरीका के 3 लड़ाकू विमानों को गलती से कुवैती सेना की गोलीबारी में मार दिया गया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार से मैं सरफिरोजी।
पश्चिम एशिया में अमरीका, इसराइल तथा ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते एक दर्जन खाड़ी देशों में काम कर रहे 18 लाख नेपाली नागरिकों का जीवन खतरे में है। एक रिपोर्ट।
ईरान के ताजा हमलों में संयुक्त अरब अमीरात में एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। पंजीकृत नेपाली कामगारों की संख्या 18 लाख हो सकती है, लेकिन अनौपचारिक रूप से खाड़ी देशों में नेपालियों की संख्या 25 से 30 लाख के बीच बताई जाती है। नेपाल के कॉन्सुलर सेवा विभाग ने नेपाली नागरिकों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। अब तक 10 लाख से अधिक नेपाली नागरिकों ने पंजीकरण कराया है। नेपाल के विदेश मंत्री बालानंद शर्मा ने कहा कि मंत्रालय ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए पहले ही तैयारी शुरू दी है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि भारत ने संकट के समय में लगातार मालदीव का समर्थन किया है। श्री नशीद ने कहा कि भारत ने साल 1988 के तख्तापलट, सुनामी, जल संकट और कोविड-19 महामारी सहित कई संकटों के दौरान मालदीव की सहायता की। उन्होंने कहा कि मालदीव को भी जिम्मेदारी का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका ने ऊर्जा सहायता के लिए अनुरोध किया है। भारत ने FIH हॉकी महिला विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ने हैदराबाद में चल रहे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की। नियमों के अनुसार महिला विश्व कप क्वालिफायर्स दो टूर्नामेंट में अंतिम 7 में जगह बनाने वाली टीमें आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। FIH महिला हॉकी रैंकिंग में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए 6 स्थान पर है। बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में कल भारत के किरण जॉर्ज को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चीन के जेसन गुनावन ने हराया। वहीं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी ने जापान के हिरोकी ओकामुरा और क्योहेई यामाशिता की जोड़ी को उन्होंने पराजित किया। सुमित अंतिल ने कल नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 69.25 मीटर भाला फेंका। पुष्पेंद्र सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की। तनाव बढ़ने और नागरिकों के मारे जाने पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने कहा वे खाड़ी के अरब देशों पर हमले जारी रखेंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करके अमरीका और इसराइल पर दबाव बनाने का निश्चय किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इराक में अमरीका का सैन्य ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त और भारत ने FIH हॉकी महिला विश्व कप में अपनी जगह पक्की की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।